मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 23 अक्टूबर 2018 है और आज के इस afeis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, कल के लाइफ मैनेजमेंट में मैंने आपसे प्रेम की ताकत के बारे में बात की थी और आज मैं उसी आप कह लीजिए कि पंक्ति में उसी श्रृंखला में आस्था की ताकत के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूं। आस्था जिसे आप कह सकते हैं कि बहुत ही गहरा विश्वास या बहुत गहरी भक्ति। जब किसी के प्रति भी हमारे मन में बहुत गहरी भक्ति का भाव पैदा हो जाता है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि जब बहुत गहरे प्रेम का भाव पैदा हो जाता है, तो वह हमारा जो भाव है आस्था में तब्दील हो जाता है। और ये जो आस्था है, जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति के प्रति ही हो, ईश्वर के प्रति हो, किसी के प्रति भी हो सकता है। यहां तक कि जो साइंटिस्ट होते हैं, जैसे रामानुजन जी की अगर हम बात ले लें, तो कह सकते हैं कि उनका अपने काम के प्रति बहुत ही गहरी आस्था थी। उनकी मैथमेटिक्स के प्रति इतनी गहरी आस्था थी कि वह आस्था ही एक प्रकार से दैवीय शक्ति में परिवर्तित हो गई थी। यानी कि आस्था भी अपने आप में एक जबरदस्त किस्म की शक्ति या कह लीजिए ऊर्जा का माध्यम बनता है। और इसके एक दो नहीं बल्कि कई कई उदाहरण हैं। और कभी न कभी मुझे लगता है कि आपने भी शायद इसका अनुभव किया होगा, और अगर नहीं किया है तो पक्का मान करके चले कि कभी न कभी आपको अनुभव करने का अवसर जरूर मिलेगा। तो यही सोच करके मुझे लगा कि आप उस अवसर को पकड़ सकें, उस अवसर को पहचान सकें और फिर बार बार उसे अपनी तरफ से दोहरा लें। इसलिए मुझे चाहिए कि इस पर भी मैं थोड़ी सी बात करूं। मित्रों, इसकी बात की शुरुआत आइए मैं एक छोटे से प्रसंग से करता हूं। यह प्रसंग सुंदर कांड का है। आपको मालूम है कि हनुमान जी को भेज दिया जाता है, लक्ष्मण मूर्छित हैं मेघनाथ की बाण से, और उन्हें हनुमान जी से कहा गया है कि आप संजीवनी बूटी लेकर के आइए। और जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर के लेने पर्वत पर पहुंचते हैं, तो उन्हें जो बताया गया था कि वो जो औषधि है वो चमकती हुई दिखेगी, लेकिन वहां तो देखा उन्होंने कि पूरे पर्वत में आग लगा दी गई, आग लगी हुई है। अब हनुमान क्या करें, वो तो संकट में फंस गए। और वो जानते थे कि अगर वो लौट नहीं पाए फिर तो लक्ष्मण जीवित नहीं हो पाएंगे, और अगर लक्ष्मण जीवित नहीं हो पाए तो फिर राम का क्या होगा, क्योंकि राम तो मनुष्यों की तरह अपने भाई के बेहोशी में विलाप कर रहे हैं। और वो तो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे पता होता कि मेरा भाई के साथ ये होगा तो मैं तो अपने पिता की आज्ञा ही नहीं मानता और वन में आता ही नहीं, तो ऐसे में क्या होगा। अब आप देखिए कि वहां तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। यहां उस शक्ति को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, ये कथाएं हो सकती कथाएं हो, सही हो, जो भी हो, हम उस बात में नहीं जाते हैं। सवाल यह है कि इनमें इनके पीछे कौन सा मनोविज्ञान छिपा हुआ है, और ये जो मनोविज्ञान है ये गलत नहीं है। ये बात अलग है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ, और यह भी सही है कि हमारे साथ ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने कभी ऐसा होने के लिए अपने आप को तैयार ही नहीं किया, या हमने उसे अवसर ही नहीं दिया कि वो ऐसा हमारे अंदर घटित करे, तो कहीं ना कहीं हम ही उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए थोड़ा सा हम उसे देख लेते हैं। देखा शैल, यानी कि उन्होंने पर्वत को देखा, न औषध चिन्ह, लेकिन उन्होंने पर्वत को तो देख लिया लेकिन औषधि को पहचान ही नहीं पाए, न औषध चिन्ह, औषधि को नहीं पहचान पाए कि इसमें जड़ी बूटी क्या है। अब इसके बाद ही देखिए तुलसीदास जी तुरंत क्या लिखते, एक झटके में लिखते हैं, उस झटके को समझने की कोशिश कीजिए। कभी का यही भावनात्मक उद्रेक होता है। वो कहते हैं कि देखा शैल न औषध चिन्ह, और सहसा कपि उपाधि गिर लिन्हा। सहसा, अचानक कपि यानी कि हनुमान ने उपारी उखाड़ लिया, गिरी लिन्हा, उखाड़ लिया, गिरी को उखाड़ लिया। कैसे हुआ ये सब, वो तो औषधि ढूंढ रहे थे लेकिन वो पहचान नहीं पा रहे हैं। अब आप देखिए कि वो कुछ भी सोच विचार कर रहे हैं कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, ले जा पाऊंगा या नहीं ले जा पाऊंगा, कुछ नहीं, वापस ही लौट चलता हूं, देखा जाएगा जो होगा, अब मेरे हाथ में क्या है, मैं इसमें कर ही क्या सकता हूं, कुछ नहीं। आप देखिए कि कह रहे हैं कि सहसा कपि उपारी गिर लिन्हा, और जैसे ही उस पर्वत को अचानक उठाया है, उखाड़ा है, अचानक, सोच करके नहीं, इधर से उठाऊं या उधर से उठाऊं, उठा पाऊंगा या नहीं उठा पाऊंगा, नॉट एट ऑल, सहसा मतलब अचानक उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति पैदा हुई कि उन्होंने उस पर्वत को उठा लिया। और इसके तुरंत बाद फिर क्या लिखते हैं, गहि गिरि नभ निश्चित धावत भयउ। और इसके बाद उन्होंने बिल्कुल वक्त नहीं लगाया और उस पर्वत को धारण करके गहि गिरि नभ निशि यानी कि आकाश में उड़ने लगे, उस रात भरे रात्रि भरे आकाश में धावत भयउ, बिल्कुल दौड़ लगाने लगे, उड़ने लगे ताकि सूर्य निकलने से पहले पहले वो उस स्थान पर पहुंच जाए। वहां भी ऐसा नहीं कि संभाल रहे हैं। तो दोस्तों ये है क्या? देखिए वैसे तो कहानी किससे जैसी चीज लगती है, अविश्वसनीय भी लगती है, लेकिन इनफैक्ट ये है क्या दोस्तों? ये आस्था की शक्ति है। हनुमान के अंदर दो चीजें थी यहां एक साथ, एक कल के मेरे थोड़े से आपको लाइफ मैनेजमेंट को याद करना पड़ेगा, प्रेम, काम के प्रति प्रेम, उन्हें जो दायित्व तो दिया गया है उसके प्रति प्रेम का भाव, राम के प्रति उनकी आस्था, नहीं मुझे राम के काम को करना है, या यूं कह लीजिए कि अपने प्रति आस्था या अपने काम के प्रति आस्था, जो भी कह लीजिए, जब प्रेम गहरे हो जाता है तो वो आस्था में ही तब्दील हो जाती है, याद रखिए। तो यहां प्रेम और आस्था दोनों मिलकर के हनुमान को इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वो पर्वत को उठा लेते हैं। और यहां जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि यहां बुद्धि का हस्तक्षेप गायब है, यहां सोच विचार नहीं किया जा रहा है, क्योंकि जब हम सोच विचार करते हैं तो देखिए उसमें तर्क आ जाता है, और जहां तर्क आएगा पक्का मान करके चलिए कि तर्क होगा तो वितर्क होगा और वहां अवरोध आएगा, उसमें फिर स्पीड ब्रेकर्स आने लगते हैं, यानी कि हमारे अंदर की जो ऊर्जा है जिसको बिल्कुल निर्द्वंद भाव से प्रवाहित होना चाहिए, बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ना चाहिए, वह बीच बीच में रुकने लगती है क्योंकि तर्क उसे रोकने लगता है। तो वहां बट नेचुरल है कि जब उसमें रुकावट आएगी, ऊर्जा में रुकावट आएगी, तो उसकी वह जो शक्ति है, जो उसकी प्रचंडता है, वो कम हो जाएगी। लेकिन यहां कोई बुद्धि का हस्तक्षेप नहीं है, इसीलिए आप रामचरितमानस के दूसरे हिस्सों को पढ़ करके देखिए कि जहां हनुमान हैं वहां बकायदे तुलसीदास जी लिखते हैं कि मन महु तर्क करे कपिलागा, यानी कि वो मन में तर्क कर रहे हैं, हनुमान जी तर्क कर रहे हैं, बीच बीच में आपको मिलेगा कि वो विचार कर, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, खूब जमकर किया है तुलसीदास जी ने, लेकिन यहां नहीं किया है, क्योंकि यहां वो जान रहे कि अगर तर्क करने लगे तो मान करके चलिए कि वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों आप खिलाड़ियों से कभी पूछिए, खिलाड़ियों से, कि किस तरीके से जब एकदम संवेदनशील बिंदु पर वो पहुंचते हैं, जैसे मान लीजिए कि आखिरी बॉल है और आखिरी बॉल पर जीतने के लिए उसे छक्का मारना होगा, लोग मार भी देते हैं, आप उसे पूछिए कि तुमने ये छक्का कैसे मारा, तो नहीं बता पाएगा वो। अगर वो बता पाएगा ना तो ये मान करके चले कि वो मार ही नहीं सकेगा, वो तो कहता है कि भैया बस मैंने तो मार दिया, ईमानदारी से बोलेगा तो बस मैंने मार दिया, वो सोचा नहीं कि यार ठीक है जो होगा देखा जाएगा, बॉल आ रही, उसको बॉल पता नहीं किस रूप में दिखाई दे रही, उसको अपना बैट किस रूप में दिखाई दे रहा है, अपने ऊपर उसको किस तरह का आत्मविश्वास है भगवान जाने, लेकिन उसने मार दिया। तो दोस्तों ये होता कैसे है, ये कौन सी ताकत है, ये कौन सी ऊर्जा है, आप इसे चाहे तो दूसरा नाम एक और दे सकते हैं, ये मेरा अपना विचार है, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा, और मैं मुझे लगता है कि इसे हम एक आध्यात्मिक ऊर्जा का नाम क्यों नहीं दे सकते, ये है आध्यात्मिक ऊर्जा है, और जहां आध्यात्मिक ऊर्जा होगी, याद रखिए आध्यात्मिक ऊर्जा बुद्धि से पैदा नहीं होती है, आध्यात्मिक ऊर्जा भावनाओं से पैदा होती है, भावनाओं से, जहां भावनाएं बहुत प्रबल हो जाती हैं, बहुत गहरी हो जाती हैं, वहां वह ऊर्जा में तब्दील हो जाती है, फिर चाहे वह भावना प्रेम से पैदा हुई हो, चाहे वह भावना दायित्व बोध से पैदा हुआ हो। और मैं यहां एक बात और कहना चाहूंगा, और वो ये दोस्तों कि आप इसे अंधापन मत समझिएगा, नाम ही कुछ देना है तो एक किस्म का पागलपन समझ लीजिए, लेकिन वो उस तरह का पागलपन नहीं है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या नहीं करूं, नॉट एट ऑल, समझ में आ रहा है, दायित्व तो बोध पूरा है कि मुझे ये करना है। हाँ, वो जो दायित्व तो बोध है वो अलग तरीके का दायित्व तो बोध है, वो कॉन्शस लेवल का दायित्व तो बोध नहीं है, ये जो दायित्व तो बोध है वो सब कॉन्शस लेवल पर उतर गया है, पता हमारी चेतना के बहुत गहरे उतर जाता है, और जब वो चेतना के गहरे उतर करके उस बिंदु को टच करने लगता है तो जो ऊर्जा वहां से पैदा होती है वो एक चमत्कारिक ऊर्जा होती है। हम खुद भी दंग रह जाते हैं, खुद पर ही विश्वास नहीं हो पाता कि यार ये हमने किया, लगता है कि ये किसी और ने कर दिया, समझ में नहीं आता है कि ये कैसे हो गया। मित्रों, मुझे नहीं मालूम कि आपने कभी इस तरह की घटनाओं का अनुभव किया है या नहीं। सोच कर देखिए, छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन प्रकृति ने आपको इस तरह का संकेत जरूर दिया होगा कि आपने अपने जीवन में कभी न कभी ऐसा कुछ किया होगा। सोचिए और इसके बाद फिर आप मेरी इस बात को अपनी उस घटना से जोड़ दीजिए, आप अपनी उस घटना का बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण कर पाएंगे और तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं, इसका अपना एक विज्ञान है, इसे हासिल किया जा सकता है, इसे पाया जा सकता है। और यदि आप में ये विश्वास पैदा हो जाएगा तो यही घटना आपके जीवन में कई बार आने के लिए उत्सुक होने लगेगी। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। अब मुझे आप सब इजाजत दें, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। नमस्कार।